हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कृषा तारा के साथ युग के विला पर रह रही थी। तारा गुस्से में ट्रेडमिल पर दौड़ रही थी, जिसके कारण उसे चोट लग गई थी। तारा के मना करने के बावजूद कृषा ने डॉक्टर को बुला लिया था। डॉक्टर के आने तक कृषा और तारा एक दूसरे से बातें कर रही थीं। बातों बातों में तारा ने महसूस किया कि जितना उसने सोचा था, कृषा उससे कहीं ज्यादा मासूम थी। साथ ही कृषा ने भी अपनी जिंदगी में काफी कुछ देखा और सहा था। कृषा की मासूमियत और निस्वार्थ प्यार को देखकर तारा के दिल में उसके लिए खास जगह बन गई थी। उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वो राणा फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करेगी। इसके लिए जरूरी था कि वो ध्रुव से और उनकी फैमिली से दूर चली जाए। जब कृषा और तारा बात कर रही थी, तभी हाउस हेल्पर ने आकर बताया कि डॉक्टर आ गए हैं। कृषा ने तारा से पूछा, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं डॉक्टर को ऊपर बुलाऊं? नहीं, मैं नीचे चल लूंगी। वैसे भी डॉक्टर की जरूरत नहीं थी, आप मेरे लिए बेवजह परेशान हो रही हो, तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तारा जैसे ही उठने लगी, उसका पैर थोड़ा लड़खड़ा गया। कृषा ने फुर्ती से उसे गिरने से बचाने के लिए थाम लिया। देखा नाने तुम कितनी ठीक हो, कृषा ने प्यार भरी डांट लगाते हुए कहा। चुपचाप बैठो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। और हाँ, मैं बेवजह परेशान नहीं हो रही। अगर तुम्हारी जगह ध्रुव को चोट लगती, तब भी मैं इतनी ही परेशान होती। कृषा ने तारा को वापस बैठाया और डॉक्टर को बुलाने चली गई। कृषा का ये प्यार देखकर तारा के चेहरे पर एक छोटी सी जेन्युइन स्माइल आ गई। अचानक उसके मुंह से निकला, ध्रुव, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें क्रिश जैसी मॉम मिली है, और हाँ, युग राणा जैसे डैड भी, जो किसी भी मुसीबत को तुम तक पहुँचने से पहले खुद पर ले लेते हैं। कुछ ही मिनटों में कृषा डॉक्टर के साथ ऊपर आ गई। डॉक्टर ने तारा के पैर को चेक किया और बोले, लगता है मसल्स इंजर्ड हुई है, मैं क्रेप बैंडेज बांध देता हूँ, बाकी इसे ज्यादा हिलाना डुलाना अभी ठीक नहीं होगा, एक हफ्ते में ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने तारा को कुछ जरूरी निर्देश दिए, दवाइयाँ लिखीं और फिर वहाँ से चले गए। डॉक्टर के जाते ही कृषा ने तारा से सख्ती से कहा, अब तुम बेड से अपना पैर नीचे भी नहीं उतारोगी, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो टेलीकॉम से कॉल कर देना, तुम आराम करो, मैं कुक को डिनर तैयार करने के लिए कहती हूँ। वैसे तुमने दिन में खाना तो खाया था ना? कृषा का पूरा दिन राणा मेंशन में बीता था, जिसकी वजह से उसे तारा की चिंता हो रही थी। ऊपर से तारा के पास मोबाइल ना होने की वजह से वो उसका हालचाल भी नहीं ले पा रही थी। हाँ, मैंने लंच किया था, तारा ने जवाब दिया। कृषा ने उसकी बात पर हल्की सी हम भरी और वहां से जाने लगी। तभी तारा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोली, क्रिश, क्या आप मेरी ध्रुव से बात करवा सकती हैं? मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ, करवा दूंगी, लेकिन अभी नहीं, डिनर के बाद, तुम पहले थोड़ा आराम कर लो, कृषा ने जवाब दिया और फिर वो नीचे चली गई। जैसे ही कृषा गई, तारा ने मन ही मन सोचा, मुझे ध्रुव से बात करके साफ कह देना चाहिए कि अगर उसे मिली और उसके भाई बहन नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। जब तक मैं यहाँ हूँ, कबीर की उम्मीदें बढ़ती रहेंगी कि मैं उसका काम कर दूंगी। जब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, तब तक मिली और उसके भाई बहन भी कबीर के चंगुल से आज़ाद नहीं हो पाएंगे, मुझे ही उन्हें आज़ाद करवाना होगा। तारा ने खुद ही फैसला कर लिया कि वो मिली के भाई बहनों को कबीर से बचाएगी। वो आंखें बंद करके लेटी थी, उधर दूसरी तरफ ध्रुव और कबीर इस वक्त राणा मेंशन के गार्डन एरिया में खड़े थे। आज वीर को ध्रुव का काम करने का मौका मिला था और उसने एक ही दिन में ढेर सारी जानकारी जुटा ली थी। वीर ने गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारा शक बिल्कुल सही था, इसमें कोई व्हाइट कॉलर शामिल है। तभी मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से अपने आदमियों को काम पर लगाए रखा, फिर भी तारा के भाई बहनों का कोई हिंट क्यों नहीं मिला। मेरी तारीफ करने के बजाय ये बताओ कि क्या पता चला है, ध्रुव ने आंखें घुमाकर कहा। वो थोड़ा चिढ़ा हुआ लग रहा था और इसका कारण साफ था, वो पूरा दिन मेहर के साथ था। वीर ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम्हारे इस इरिटेटेड बिहेवियर को बाद में डिस्कस करेंगे। मार्टिन ने मिली के भाई बहनों को आखिरी बार स्लम एरिया में किसी जगह पर कैद करके रखा था। उसका इरादा था कि वो उन्हें बेच दे, लेकिन उसकी डील पक्की होने से पहले ही तुमने उसे मार डाला। फिर से तारीफ शुरू, मुझे नाम चाहिए वीर, इसमें किसका हाथ है? कहीं मार्टिन ने हमारे पीछे किसी और को तो नहीं छोड़ रखा, ध्रुव ने बेसब्री से कहा। पूरी बात तो सुनो, मार्टिन के मरने के बाद उसके आदमी ये काम संभाल रहे थे। जिस रात वे बच्चों को डील के लिए ले जा रहे थे, किसी ने उन पर अटैक कर दिया। अटैकर्स की कुछ खास पहचान नहीं, उन्होंने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। फिर भी थोड़ी दूर आगे एक स्ट्रीट कैमरे में वे कैद हो गए। उनमें एक बंदा एक ऑफिसर है जो अक्सर सीक्रेट प्रोजेक्ट्स पर काम करता है। मुझे शक है कि बच्चे उसी के पास हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि उसने उन्हें बचाने के बाद भी किडनैप क्यों रखा है, वीर ने सारी बात विस्तार से बता दी। ध्रुव हमेशा की तरह वीर के काम से काफी इम्प्रेस हुआ। उसने सिर हिलाकर कहा, चलो इस बात पर तुम्हारी तारीफ बनती है, स्ट्रीट कैमरे तक छान मारे तुमने, तारीफ बाद में होती रहेगी, मुझे उस ऑफिसर की पूरी जानकारी चाहिए, लगता है इस बार मुझे खुद जाना होगा, देखना है आखिर उसके इरादे क्या हैं। तुम रहने दो, मैं देख लूंगा, वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें मेहर और फैमिली को वक्त देना चाहिए, वीर ने समझाते हुए कहा। मेहर का नाम सुनते ही ध्रुव उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। वो बोरियत भरे लहजे में बोला, लगता है आजकल सबने यही काम पकड़ लिया है, मुझे दिन रात याद दिलाना कि मेरी शादी मेहर से होने वाली है। मैंने कहा ना, मैंने तारा से वादा किया है कि मैं खुद उसके भाई बहनों को सेफली उसके पास लाऊंगा। वैसे उस ऑफिसर का नाम क्या बताया तुमने? कबीर अग्निहोत्री, वीर ने जवाब दिया। कबीर अग्निहोत्री का नाम सुनते ही दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। ध्रुव ने बिना किसी भाव के कहा, तारा का पूरा नाम भी तारा अग्निहोत्री है। हाँ, मुझे भी यही वियर्ड लगा, अब थोड़ा शक हो रहा है। उम्मीद है वो किसी सीक्रेट मिशन पर यहाँ नहीं आई हो। वैसे एक गरीब बरकी के भाई बहनों को किडनैप करके एक पुलिस ऑफिसर को क्या मिलेगा, ऊपर से दोनों का सरनेम भी एक ही है, वीर ने सिर हिलाते हुए कहा। वो हर पॉइंट पर गौर कर रहा था। दोनों इतने नासमझ नहीं थे कि तारा और कबीर के सरनेम के एक होने की बात को नजरअंदाज कर दें। ये महज एक इत्तफाक ही निकले, इसी में भलाई है, वरना अगर तारा ने मुझे धोखा दिया तो मैं ना तो कभी किसी पर भरोसा कर पाऊंगा, ना ही उसे इस धोखे के लिए माफ करूंगा, ध्रुव ने ठंडी सख्त आवाज में कहा। ये सच था कि पहली बार उसने अपनी फैमिली के अलावा किसी पर भरोसा करके उसे दोस्त बनाया था। अगर तारा ने उसे धोखा दिया तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। ठीक है, तो बताओ आगे का प्लान क्या है, वीर ने पूछा। ध्रुव कुछ कहने ही वाला था कि तभी कृषा का कॉल आ गया। ध्रुव ने कॉल रिसीव किया और वीर से थोड़ा हटकर बात करने लगा। तो आप मुझे मिस कर रही हैं कृष, डैड भी घर पर नहीं है, मन नहीं लग रहा होगा आपका, तभी मैंने कहा था कि यहीं रुक जाइए, ध्रुव ने कॉल रिसीव करते ही हल्के अंदाज में कहा। लेकिन दूसरी तरफ तारा थी, कृषा ने उसके कहने पर ध्रुव को कॉल किया था और तारा आराम से बात कर सके ये सोचकर वो वहां से चली गई थी। मैं बोल रही हूँ ध्रुव, तारा ने दूसरी तरफ से जवाब दिया। तारा का नाम सुनते ही ध्रुव के चेहरे के भाव बदल गए। वीर के साथ अभी हुई बात के बाद उसे तारा पर फिर से शक हो गया था।
बोलो, किस लिए कॉल किया और कृष का मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहा है, ध्रुव ने सख्त लहजे में पूछा। मैंने उनसे कहा था कि मुझे तुमसे बात करनी है ध्रुव, तारा ने जवाब दिया। उसे ध्रुव के लहजे में तलखी महसूस हुई, जबकि वो आमतौर पर उससे काफी नरमी से बात करता था। ठीक है, बोलो क्या काम है, ध्रुव ने काफी रूडली पूछा। उसके लहजे से तारा को बुरा लगा। उसने अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए सख्त आवाज में कहा, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं बेवजह तुम पर बोझ बनी हुई हूँ। दरअसल ध्रुव, अगर मैं बाहर जाऊंगी तो अपनी बस्ती के लोगों की मदद से अपने भाई बहनों को ढूंढ लूंगी। शायद हमने गलत अंदाजा लगाया हो, मार्टिन के मरने के बाद मेरे भाई बहन खुद ही आजाद हो गए हों। मैं जाकर उन्हें ढूंढूंगी तो शायद वे मुझे मिल जाएं। मुझे बस थोड़ा समय दो, परसों मेरी सगाई है इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसके अगले दिन मैं पक्का उन्हें ले आऊंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। फिर तुम चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ध्रुव ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। कॉल काटने के बाद ध्रुव तारा के बारे में सोचने लगा। उसने मन ही मन कहा, तुमसे इस तरह बात करके मुझे भी बुरा लग रहा है, लेकिन फिलहाल यही ठीक है। तुम्हारा और उस ऑफिसर का सरनेम एक ही है तारा, ऐसे में तुम्हारे भाई बहनों को ढूंढना और भी जरूरी हो गया है। अगर मैं तुमसे पूछूंगा तो तुम कभी नहीं बताओगी कि उस ऑफिसर से तुम्हारा क्या रिश्ता है जो वो तुम्हारे भाई बहनों को लेकर गया है। बेहतर यही है कि अब उन्हें ढूंढकर तुम्हें तुम्हारी सही जगह पहुंचा दूं, ताकि मैं कम से कम अपने दिल और दिमाग की इस जंग से बाहर निकल सकूं। फिलहाल ध्रुव यही मान रहा था कि तारा और कबीर का सरनेम मिलना एक संयोग था। वो वापस वीर के पास अपने प्लान पर चर्चा करने चला गया। उधर ध्रुव से बात करने के बाद तारा का मूड और खराब हो गया। उसे लगा था कि इतने दिनों बाद वो ध्रुव से बात करेगी तो न जाने क्या क्या कहेगी। तुम तो इतनी जल्दी बदल गई ध्रुव, कोई बात नहीं, शादी करने जा रहे हो तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी के अलावा कोई दूसरी लड़की वैसे भी मायने नहीं रखती। मैं भी अपनी नादानी में न जाने क्या क्या सोच बैठी। ध्रुव ने मुझसे 3 दिन का टाइम लिया है, उम्मीद है कि 3 दिन बाद वो मिली और उसके भाई बहनों को आज़ाद करवा देगा। फिर मैं भी हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं करनी। जितनी भी सेविंग्स हैं उसे लेकर देखूंगी कि आगे क्या करना है और कहाँ जाना है, तारा ने मन ही मन कहा। वो अपनी ख्यालों में खोई थी तभी कृषा वहाँ पहुँची। उसने देखा कि तारा का चेहरा उतरा हुआ था। क्या हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे तुम अभी रो दोगी, कृषा ने तारा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, अपने भाई बहनों के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हो गई थी। ध्रुव ने कहा कि वो सगाई के अगले दिन जाएगा और उन्हें वापस ले आएगा, फिर मैं भी यहाँ से चली जाऊँगी। मेरी वजह से आप सबको परेशानी हो रही है, आप अपनी फैमिली के फंक्शन को भी खुलकर इंजॉय नहीं कर पा रही हैं, तारा ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। तारा के जाने की बात सुनकर कृषा के चेहरे पर भी मायूसी छा गई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमारे पास रह सको? अगर मेरा बस चलता तो जरूर रहती, लेकिन ये सही नहीं होगा, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं और मैं उनसे भाग नहीं सकती, तारा ने कहा। ठीक है, फिर ऐसा करो, जाने के बाद कभी कभी मिलती रहना और हो सके तो कॉल पर बात कर लिया करो, बहुत टाइम बाद कभी ऐसा मिला है जिससे सचमुच बात करने का मन करता है, कृषा ने मुस्कुराते हुए कहा। तारा ने उसकी बात पर हल्की सी हामी भरी, हालांकि वो जानती थी कि एक बार अगर वो सबसे दूर चली गई तो फिर कभी उनसे बात नहीं कर पाएगी। अगला पूरा दिन राणा मेंशन में ध्रुव और मेहर की सगाई की तैयारियों में बीता। आखिरकार वो दिन आ गया जब उनकी सगाई होनी थी। सारी तैयारियां सारा ही देख रही थी। कल कृषा राणा मेंशन नहीं आई थी और सगाई के दिन भी वो शाम को ही आने वाली थी। ध्रुव का मूड खराब था, ना तो कृषा उसकी सगाई में इंटरेस्ट ले रही थी और ना ही युग उसका कॉल रिसीव कर रहा था। जिस दिन मुझे अपनी जिंदगी के सबसे अहम लोग अपने साथ चाहिए, वे दोनों ही मुझसे मुंह मोड़ रहे हैं। क्या उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? एंजल को भी मेरी एंगेजमेंट अटेंड करने का मन था। ठीक है, वो नहीं आ सकती, पर कम से कम आप दोनों तो मेरे साथ रह सकते थे, ध्रुव ने भारी मन से खुद से कहा। वो जानता था कि इस मामले में वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अगर युग ने सगाई में ना आने का फैसला किया था तो वो बिल्कुल नहीं आने वाला था। क्या ध्रुव और तारा का ये विश्वास का रिश्ता टूट जाएगा, ये तो अगले भाग में पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या युग सगाई में आएगा या नहीं? पढ़कर अपनी समीक्षा जरूर दीजिएगा। अगले भाग में मिलते हैं।